बहनों ने अति सुंदर भजन पढ़ा है। ईश्वर कृपा करें कि जो मांगे उस भजन में बहनों ने अर्पित की हैं गुरु चरणों में, वो केवल कविता तक ही सीमित न रहे, हम गंभीरता से अपने प्रति सोचें, स्वनिरीक्षण करें। ये साधना का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है, ये हम सब में कमी है। सत्संग में पढ़ लेंगे, परंतु घर जाकर या किसी वक्त इलादा बैठकर स्वनिरीक्षण हम नहीं करते हैं। मुरानी माने कौ नानक में नाही को गुण राख लियो सरनाई। इतनी महान हस्ती परमपिता परमात्मा के चरणों में कहती है कौ नानक में नाही को, हे परमात्मा, हे मेरे सच्चे पिता, मेरे में तो एक भी गुण नहीं है कि जिसके मैं अपना अधिकार बना सकूं, तेरे चरणों में पहुंच सकूं। मेरे पास तो एक ही साधन है, कर्बत आपकी सेवा में प्रार्थना करूं कि आप मुझे अपनी शरणागत में शरण में ले लें। इस रास्ते पर भी अहंकार अपना साम्राज्य रख, गुरु या बड़ा भाई या बड़ी बहन इसलिए की जाती है कि वो हमें समय समय पर जो हमारे में अवगुण हो हमें वो बताता जाए। और हमारा भी धर्म है, कर्तव्य नहीं धर्म, कि उसकी बात को माने, तर्क नहीं करें उससे। ये अहंकार छोटे छोटे व्यक्तियों की तो परवाह करता ही नहीं है, बड़े बड़े लोगों को भी। यदि आप लोग आजकल टीवी पे आ रहा है ओम शिवाय नमः वो सीरियल देख रहे हैं, तो उसमें अहंकार की प्रदर्शनी दिखाई है कि ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति को भी अहंकार छोड़ता नहीं। भगवान शिव के ससुर को अहंकार ने मारा, नारद जी को भी अहंकार आ जाता है। सबसे नम्र तबीयत के स्वभाव के नारद जी हैं, क्षमा करेंगे, भगवान शिव को क्रोध आ जाता है और गणेश जी का वध कर देते हैं। तो ये हंसी मजाक की बातें नहीं है, कि कोई हम महापुरुषों पर बुरी बात नहीं कह रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम उनके आगे क्या है, उन पर अहंकार आक्रमण कर सकता है और सत तथा सात्विकता से नीचे के गिरा देता है। सत्य कहते हैं आत्मा से, वो तो आत्मा स्वरूप थे, आत्मा ही थे, परंतु ये व्यवहार में कुछ ऐसी बातें आई तो आत्मा से नीचे गिरे, सात्विकता से नीचे गिरे, तामस तक पे आ गए और गणेश जी का वध कर दिया। तो हमें दूसरों के दोष नहीं देखने हैं, महापुरुषों के तो देखने ही चाहिए, तब ही उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। दूसरी बात है, चाहे हम लोग परलोक में भी चल जाएं, सत काम करें और परलोक में हमें स्थान मिल जाए, परंतु आत्म स्थान नहीं मिलेगा। ईश्वर की समीपता नहीं मिलेगी, उसके लिए भी पुनः मनुष्य चोला परमात्मा की कृपा से यदि मिला और आपने साधना की तो हो सकता है कि आपकी आत्मा परमात्मा मिले हुए, नहीं तो ये 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा मनुष्य। इस बात को तो सब शास्त्र मानते हैं। पुरलोक पहुंचने के बाद भी आत्मज्ञान के लिए, आत्मचुत के लिए, परमात्मा जैसे बन जाने के लिए, परमात्मा में मिले होने के लिए दोबारा जो मनुष्य चोला मिलेगा, जब तक वो चोला प्राप्त नहीं होता है तब तक जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। बहनों ने बड़ा सुंदर भजन पढ़ा है, गुरु से प्रार्थना की है, ईश्वर से प्रार्थना की है, कुछ स्वयं निरीक्षण किया है कि ये हमारे दोष हैं। शरीर छोड़ने से पहले प्रभु कृपा करो इनसे हम मुक्त हो जाए। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, परंतु घबराने की जरूरत है। अंग्रेजी में कहते हैं ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन, प्रयास करो प्रयास करो, बारंबार प्रयास करो, इसी का नाम अभ्यास है। अभ्यास केवल 10 मिनट 15 मिनट प्रातः सायंकाल बैठ जाना ठीक है शुभ है, परंतु वास्तव अभ्यास 24 घंटे का है। अभ्यास के साथ स्वयं रक्षण करना है, और किसी को अपना बड़ा मान लेना, अपने दोषों को उसके चरणों में जाके निवेदन करना बड़ी निम्रता के साथ, दीनता के साथ। और बहुत सादा भोजन खाऊंगा। हम व्रत रखते हैं उस दिन विपरीत वस्तुओं का सेवन करते हैं, घी ज्यादा खा लेते हैं, दूध ज्यादा पीते हैं, और मिर्च मसाला कई लोग ज्यादा खाते हैं, तो ये व्रत नहीं है। व्रत का मतलब है एक कसम खाने, दृढ़ संकल्प करना, आज मैं अपनी जीवन पर कंट्रोल रखूंगा, वश में रखूंगा इसको, ये उठ पुट चीजें मांगती रहती है, मैं नहीं दूंगा इसको, भूखा रखूंगा इसको सारा दिन। कई लोग शाम को 2-4 घूंट पानी पी लेते हैं सो जाते हैं। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा है, और उन्होंने अपने सेवकों को रोजे प्रदान किए, गुरु महाराज कहा करते थे कि जिस व्यक्ति को जीवा पर कंट्रोल है, ये व्रत जीवा को कंट्रोल में रखने के लिए। उनका फरमान था कि यदि जवान जीवा हमारे वश में आ जाए तो शरीर की अन्य सब इंद्रियां हमारे वश में आ जाए। ये रोजे रखने व्रत रखने उसका भाव यही है कि मन में मानसिक शक्ति आ जाए कि हम शरीर तथा अन्य सब इंद्रियों को अपने वश में कर लें। व्रत का अर्थ ये है, ठीक है उस दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए, ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए, हो सके तो काम पर नहीं जाना चाहिए, घर में एकांत बैठ के उसकी याद में रहना चाहिए। तो खैर वही बात कबीर साहब फरमा रहे हैं, ये मनुष्य का चोला बार बार नहीं मिलेगा, तुम्हारी जबान भी बंद हो जाए बुढ़ापे में, तुम्हारे शरीर के अंग भी काम ना करें, क्या पता किस वक्त क्या हो जाए। तब तक ईश्वर के साथ अपना संबंध, नाम का मतलब है ईश्वर के साथ संबंध, ये नहीं टूटना चाहिए। इधर राम राम कर रहे हैं, उधर खाना बना रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो लाभ होता है, मगर पूर्ण लाभ नहीं होगा। इस काम को सर्वश्रेष्ठ समझना चाहिए और इसके लिए सर्व अधिक समय देना चाहिए। और कबीर साहब का जीवन पढ़े, नाम के साथ उनका जीवन भी, जीवन का भी अध्ययन करना चाहिए, यानी महापुरुषों के जीवन का भी अध्ययन करना चाहिए। और जिस महापुरुष की सेवा में आप जाते हैं उसके जीवन का भी अनुसरण करना चाहिए। जहाँ किसी का विश्वास है, श्रद्धा है, सभी हम पूजा करते हैं, हमारे लिए सब महान है। ये कभी सोच कर नहीं करता करना चाहिए कि वृंदावन में तो भगवान कृष्ण की पूजा होती है, अयोध्या में भगवान राम की पूजा होती है, और अयोध्या में कोई भगवान कृष्ण का नाम नहीं लेता है तो उनको अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान राम भी ईश्वर के प्रतीक हैं, भगवान कृष्ण भी ईश्वर के प्रतीक हैं, भगवान विष्णु के दोनों अवतार हैं। तब हम क्यों एक को बड़ा एक को छोटा समझते हैं, या एक का नाम नहीं लेना चाहते दूसरे का नाम लेना चाहते? ये मन करता है, मन का अहंकार करता है ऐसी बातें। ऐसी बातों से बचना चाहिए, किसी भी महापुरुष की निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। वैसे तो संसार में रहकर किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो कबीर साहब का जीवन देखिए, बड़ी सरलता है। जो कुछ कमाते हैं, हाथ की कमाई है, मजदूरी है, जरा है, आधी कमाई लोगों की सेवा में लगा देते हैं, आधी अपने लिए रखते हैं। और सबसे बड़ा गुण जो उनमें है, वो दूसरे की बुराई नहीं करते। उनकी कोई बुराई करता था तो वो प्रसन्न होते थे। उनकी पवित्र वाणी में है, निंदो मुको निंदो निंदो, और कहा है कि मुझे बार बार निंदो ताकि मेरा अहंकार टूटे। जो बात निंदा में आप कह रहे हैं उस बात को मैं लेकर संरक्षण करूं और उन कमियों को से मैं मुक्त हूं। और हमें उन्होंने प्रेरणा दी है कि जहाँ हम जिस मकान में रहते हैं वहाँ आंगन में किसी निंदक को बिठाओ, वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपका गुरु है। जब भी आप कोई बुराई करें वो आपको बताए और उसकी बात को बुरा ना माने, उसे तर्क नहीं करें, उसकी बात सुनकर प्रयास करें कि उस बुराई से आप निवृत्त हो जाए, मुक्त हो जाए। निंदो मुको निंदो। हम में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसको एक दो बुरे शब्द कह रहे हैं वो शांत हो जाए? कोई नहीं मिलेगा। बहुत कठिन है ये अहंकार तोड़ना, बड़ा कठिन। ये व्रत जरूर रखने चाहिए, महीने में एक दफा या दो। परंतु व्रत वाले दिन स्वयं निरीक्षण नमस्कार करना चाहिए, अपने अवगुणों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए, जैसे अभी प्रार्थना मैंने कर रही थी। और भोजन उस दिन अति सूक्ष्म अति सरल होना चाहिए और कम से कम खाएं, पेट भर के नहीं खाएं। Also dieser Ruf. कोई बुरा भला कह देता था, उनका सह स्वभाव था, बनावटी नहीं था। सहज कहते हैं बिना प्रयास के बात करने, स्वाभाविक हो जाए। और उन्होंने बाइबल में लिखा भी है, फॉरगिव 70 times 7, यानी 1000 बार भी क्षमा करनी पड़े, क्षमा करते चले जाओ। कहावत के रूप में कहा 70 times 7, 1000 बार भी क्षमा करें। और वो फांसी पर चढ़ रहे हैं, और जिसने फांसी पे का धागा खींच रहा है उसको कह रहे हैं, तुम्हारा दोष नहीं है, मैं परलोक में पहुंचूंगा, तुम मेरे साथ पहुंचोगे और तुम मेरे से एक कदम पे आगे होगे। साधना का अर्थ है 24 घंटे का जो हमारा व्यवहार है, सोचना है, बोलना है, काम काज है, चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं या दुकानदारी करते हैं, वो सब साधना है, उसको साधना बनाइए। गृहस्थ का जीवन है, पूजा करो, बनाइए। हमारी बहनों में तो ये गुण रहा है, अब वो कहीं कहीं खत्म होता जा रहा है, परंतु पुरुषों को भी होना चाहिए। हमारी बहनें पति को पति परमेश्वर कहती हैं, जब तक पति खाना नहीं खाएगी तो वो नहीं खाए। अब जो नई सभ्यता आ रही है और आ गई है उसकी बात छोड़िए, जो हमारी संस्कृति है उसको समझो। स्त्री समृद्धि है, पति को भगवान विष्णु का रूप समझ, इसी तरह पति को भी स्त्री को लक्ष्मी का रूप मानना चाहिए। भगवान विष्णु की इतनी पूजा नहीं होती जितनी पूजा लक्ष्मी जी की होती है। क्यों? लक्ष्मी जी के गुण इतने ऊंचे थे, इतनी दीनता थी, और सब पर दया करने वाली है। इसलिए दीपावली पर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की नहीं करते। और लक्ष्मी जी से पैसा मांगते हैं, मांगना चाहिए उसे लक्ष्मी जी से जो लक्ष्मी जी के गुण थे। कितना समर्पण है लक्ष्मी जी भगवान से, कहती है भगवान मैं तो सारी आयु आपके चरणों में बैठू, आप मुझे कभी पूछना कि मुझे क्या चाहिए, ये सोचते हो कि 2 दिन 4 दिन मैंने आपके फोन दबाए तो आप पूछे मुझे क्या चाहिए, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, सारा धन मिल गया, सब संसार का धन मुझे मिल गया, सब संसार की कीर्ति मिल गई। कीर्ति उन्हीं की ज्यादा होती है लक्ष्मी जी, पूजा उन्हीं की होती है, सब कुछ मिल गया मुझे, आप मुझे मत कहिएगा कि मुझे क्या चाहिए। गुणों पर भी मनन करना चाहिए, कौन से गुण हमें चाहिए और कौन से अवगुण हैं जिनसे हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। ये अहंकार अपने अवगुणों को मानता नहीं, एक व्यक्ति में नहीं, ये सामान्य वृत्ति सब लोग की, हम सब की। कभी 2 व्यक्तियों को लड़ते हुए देखो, कोई नहीं कहता कि भाई मेरे से गलती होगी माफ कर दो, आगे से ऐसी बात नहीं होगी, पढ़े लिखे। तो साधना का अर्थ ये है, सत्संग में जाकर महापुरुष की सेवा में जाते हैं, उनके जीवन का अनुसरण करें, या जिस धर्म के वो अनुयायी हैं उस धर्म के जो सर्वश्रेष्ठ आराध्य हैं उनकी पूजा करें, उनके गुरु के गुण, शास्त्रों में जो बताया गया हमें रास्ता वो गुण उनको उन्होंने प्रयास करे, ये साधना है, ये अभ्यास है। अभ्यास करते हैं बार 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 बार, ट्राई गेम ट्राई। सत्संग का बड़ा असर पड़ता है। एक व्यक्ति के यहाँ डाकू देवता के रूप में आ गए और कहा, आशीर्वाद दिया पहले जैसे देवता लोग करते हैं, हमारी पूजा करो और हमें ये सामान चाहिए। वो भक्त था, भावुकता में आकर वो सब चीजें ले आया। परंतु ईश्वर की कृपा से उसे याद आया, उसने कथा में सुना था कि देवताओं का परछाई नहीं होती, साया जो होता है ना, हम सबका साया होता है, हम जब धूप में चलते हैं, देवताओं की नहीं होती ये निशानी। तो उसने सत्संग में कभी दो चार सेकंड बैठ के ये बात सुनी थी, तो उसके दिमाग में आया कि इनके तो परछाई है, ये कहते हैं देवता, ये तो देवता नहीं। वो अंदर गया और लाठी ले आया और पीटने लगा उनको, आप पर डाकू। तो जो व्यक्ति गलती करता है वो डर जाता चलता है, तो वो भाग। तो ये बात सत्संग में मिलती है। तो गुरु एक क्षण दो क्षण जाने से ये बात उसके दिमाग में बैठ गई और वो डाकू से बच गया। और यदि वहां हम जाएं तो कितना हमें लाभ होगा। और सभी शास्त्र ये कहते हैं, वहाँ जाओ, उनकी सेवा में आत्म सत्कार के साथ श्रवण करो, मनन करो, निध्यासन करो और वैसे बन जाओ जैसा वो कहते हैं। सब शास्त्रों में, चाहे मुसलमानों के शास्त्रों में, चाहे हमारे शास्त्रों में, जैसे गुरबानी हो, सब यही बात है। केवल शरण किया और उसी वक्त ओम शांति का पाठ किया, नाश्ता आ गया, खाया पिया, आपस में गप्पे शप्पे लगाए, और जो सुना था वो सब भूल गया। घर जाते जाते फिर याद भी नहीं रहता कि आज क्या बोला गया था। इस रास्ते में गंभीरता की बड़ी आवश्यकता है। किसी महापुरुष के पास बैठ के उनकी वाणी सुने या उनकी वाणी पुस्तकों में दर्ज है वो पढ़े, तब ध्यान हमारा उन शब्दों में ही होना चाहिए, उन शब्दों का अर्थ ही होना चाहिए। थोड़ा पढ़े, कम पढ़े बेशक, परंतु अर्थों के साथ। और फिर पढ़कर पांच मिनट आंखें बंद करके मनन करें, क्या पढ़ाया था हमने, श्रवण मनन नित्यासन हम वैसे।